الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواد بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اور ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا, اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا, یعنی کل قیامت کے دن اس کا کوئی چھوٹا سا نیک عمل بھی, یہ نہ سمجھے کہ کوئی نیک عمل چھوٹا سا ہے, اللہ رب العزت اس کو بھی اہمیت دے گا تمہارے نامہ اعمال کے لیے, اور اس کو نامہ اعمال کے پردے میں رکھا جائے گا. اس پرفتن دور میں جبکہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں اور ہمارے چاروں طرف دعوت گناہ موجود ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے گناہوں کو سے بچا جائے, یہاں تو قدم قدم پر گناہ ہیں. پاکستان تو پھر بھی الحمدللہ بہتر ہے, دوسرے ممالک میں جایا جائے تو اور بھی زیادہ. اللہ رب العزت نے مسلمان کو خصوصاً تنہا نہیں چھوڑا, جہاں شیطان نے قدم قدم پر اس کو گناہ کی دعوت دی, اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے اعمال چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے عوض بڑا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ان کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا. اور ایسے اعمال عطا فرمائے کہ جو دیکھنے میں بڑے کم تھے لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. ہم لوگ کتنے غافل ہیں اور کس قدر گھاٹے کی سوداگر ہیں کہ دنیاوی معاملہ آتا ہے تو ہم اس میں اپنے منافع کو تلاش کرتے ہیں, اور کسی سودے میں منافع کم ہو تو ہم سودا کینسل کر کے دوسرا کوئی سودا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے معاملے میں اور اعمال کے معاملے کے اندر ہم لوگ اکثر بڑے گھاٹے کا سودا کر دیتے ہیں. وہ گناہ جس کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑے, وہ گناہ جس کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑے, ہم اس کو مشقت کر کے اور अपना पैसा खर्च करके माज़अल्लाह उसको हासिल करते हैं और गुनाहगार होते हैं। और ऐसी नेकियां जिसमें ना तो मुशक्क़त है ना ही पैसे का खर्चा है, हम उन नेकियों को आसानी से छोड़ देते हैं। तो क्या ये घाटे का सौदा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो करम नवाजी है कि तुम ये छोटा सा अमल कर लो, हम तुम्हें इसका इतना अजर व सवाब अता करेंगे, और हम ये जानबूझकर उसको छोड़ देते हैं और उस गुनाह की तरफ चले जाते हैं जिसमें हमारी जिस्मानी मशक्क़त भी होती है और पैसे का खर्चा भी होता है। तो आज हम गौर करते हैं और कोशिश करते हैं आज से कि हम अब घाटे का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि हर छोटी सी छोटी नेकी भी हो तो हम उसको हासिल करें। शायद कि एक नेकी की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दें, उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है। इस मामले में हमें दो बातों की कोशिश करनी है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि हम गुनाहों में मुलविस ना हों, गुनाहों से इज्तनाब करें और वो रास्ते जो गुनाहों की तरफ जाते हैं उनको अपने से दूर कर लें और खुद उनसे दूर हो जाएं। और दूसरी बात कि नेकियों की तरफ तवज्जो करें और कोशिश करें कि हम फराइज़ व वाजिबात के साथ नवाफिल और मुस्तहबात पर भी अमल करें ताकि नेकियों में इजाफा हो और गुनाहों की मगफिरत हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना करम है कि उसने कितनी नेकियां ऐसी रखी हैं। बल्कि मैं आपको ये बात समझाऊं, ये बात बताऊं, कभी आपने गौर किया कि आप अहादीस का मुताला करते हैं, मैं आपको कुछ अहादीसें अभी सुनाऊंगा, उसमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये नेकी करोगे तो इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हारे इतने गुनाहों को माफ कर देगा, गुनाहों की मगफिरत कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकियों में तो ये सलाहियत रखी है कि नेकियां सवाब में भी इजाफा करती हैं और गुनाहों को भी मिटाती हैं, लेकिन गुनाहों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम जैसे लोगों को देखते हुए गुनाहों में सिर्फ गुनाही की सलाहियत रखी है, नेकियों को मिटाने की सलाहियत नहीं रखी। हाँ, वो नेकियां हम खुद जाया कर दें माज़अल्लाह तो वो एक अलग है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने आप को नेकियों की तरफ रागिब करें और हत्तुल इम्कान गुनाहों से अपने आप को बचाएं। लेकिन ये भी ना समझा जाए कि गुनाह करते रहो और साथ साथ नेकियां करते रहो तो कोई ऐसी बात नहीं। कुछ बाद गुनाह ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, जिनकी वजह से नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन नेकियों की अक्सरियत ऐसी है कि जो गुनाहों की मगफिरत कर देती है और गुनाहों को मिटा देती है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम शरीफ की हदीस किताबुस्सयाम में मेरे आका जाने कौनैन सैयदुल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वासहाबी वसल्लम ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक बताला उस रोज़े की बरकत से गुज़िश्ता और आने वाले सालों के गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। एक दिन का रोज़ा और एक दिन अल्लाह तबारक वताला की मोहब्बत में भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, नफ्सानी ख्वाहिशात को बर्दाश्त किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। इसी तरह से एक शख्स नेकी और इबादत की नियत से और किसी फ़र्ज की अदायगी या नेकी पर अमल करने के लिए या किसी इबादत के करने के लिए वुजू करता है और वुदू करने के लिए वो कोशिश करता है कि मैं अच्छी तरह वुदू करूं और कामिल वुदू करूं, तो उसका ये वुदू करना और वुदू के लिए इबादत की नियत करना बहुत सारे गुनाहों की मगफिरत का सबब बन जाता है। अब यहां मैं ये बात अर्ज कर दूं कि अच्छी तरह वुदू करने का ये मतलब नहीं कि हमने टोटी फुल खोल दी और जनाब हम वुदू करे जा रहे हैं, अच्छी तरह से धोए जा रहे हैं, पानी भी जाया कर रहे हैं। कोशिश करिए कि जब आप वुदू करें, हम सब कोशिश करें कि जब हम वुदू करें तो हम वुदू में इस तरह पानी का इस्तेमाल करें जिस तरह कि हम एक लोटे से वुदू करने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे एक हाथ में लोटा या कोई बर्तन होता है जिसमें पानी हो और दूसरे हाथ से हम वुदू कर रहे हों तो हम कम पानी खर्च करते हैं लेकिन कामिल वुदू कर लेते हैं। तो अगर कोई इस नियत से ये सब काम करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया है कि आपके पास पानी कम था, आपने वुजू किया लेकिन हर वजू को तीन तीन मर्तबा नहीं धोया। पानी अगर कम हो, अगर इतना पानी हो कि खाली फर्ज वुजू अदा हो रहा हूँ कि यानी चेहरा धो लिया, हाथों को कोनियों तक धो लिया, मसा कर लिया, पैरों को धो लिया, तो फिर खाली फर्ज भी अदा कर लिया जाए वुजू करने के लिए। अगर इतना पानी है कि आपने तमाम आदाए वुजू धोए सुन्नतों पर भी अमल के लिए लेकिन हर वजू को तीन दफ़ा नहीं धोया तो फिर भी कोई बात नहीं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस तरह वुजू करके निकले और आपने पानी मंगाया, सख्त सर्दी के दिन थे, नमाज फजर का वक्त था, पानी आ गया, आपने फिर वो पानी लेकर अपने आदाए वुजू को एक एक मरतबा तीन दो दो मरतबा फिर धोया ताकि हर वजू को तीन मरतबा धोने का सवाब जो है वो भी मुझे हासिल हो जाए। और फिर अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान उन्होंने सुनाया कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जब कोई बंदा कामिल वुजू करता है अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कितना आसान कि हम खाली वुजू करें और अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। अजान होती है पांच वक्त, हम उस अजान को एहतराम से सुन लें और सुन के अजान का जवाब दे दें, यानी अगर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तो हमने भी अल्लाहु अकबर कह दिया और उसके साथ साथ हम दोहराते रहे यही अजान का जवाब, अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालहु व अम्मा नवालहु इसकी बरकत से भी हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा देता है। तो अब हमें उन बहानों को, उन नेकियों को तलाश करना है जिसने हमारे गुनाहों की मगफरत करनी है, क्योंकि गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और उन गुनाहों के मिटाने की फिक्र नहीं। तो दोनों काम करने हैं कि गुनाहों से बचना भी है और नेकियों की तरफ रागिब भी होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में आया कि जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है और गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन कहता है तो उसके जवाब में आमीन कहा जाता है। हमारे यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक जो है वो आहिस्तगी के साथ कहा जाएगा। बहुत से लोग हरमैनी शरीफ़ैन से आते हैं तो वो भी ज़ोर ज़ोर से आमीन आमीन कहते हैं। ये दूसरे अइम्मा के नज़दीक है लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक ये है कि हम आहिस्तगी के साथ आमीन कहें। आहिस्तगी के साथ भी आमीन कहना, सिर्फ आमीन ही कहना, अब जो लोग आमीन बिल जहर कहते हैं वो भी इस सवाब से महरूम नहीं होंगे और जो आमीन आहिस्तगी के साथ कहते हैं उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आमीन कहता है तो मलाइका भी आमीन कहते हैं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन के बाद मलाइका भी आमीन कहते हैं। अगर दोनों की आमीन मिल जाए, यानी जब हम आमीन कह रहे हैं फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, दोनों की आमीन मिल जाए, सरकार फरमाते हैं इसकी बदौलत अल्लाह तबारक व ताला अगले पिछले गुनाहों को बख्श देता है। कितने सिर्फ मुंह से आमीन कहा और अगर वो आमीन किसी फरिश्ते की आमीन से मिल गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों की मगफरत कर देता है। तो अब वक्त यह है कि ये मत सोचना कि अभी हम बच्चे हैं, अभी हम नौजवान हैं, अभी हम जवान हैं या अभी हमारी उम्र बाकी है, कुछ पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए और दुनिया से रुख्सती हो जाए। तो आइए कोशिश करें कि हम हर उस मुस्तहब अमल की तरफ जाएं जो अमल अल्लाह तबारक व ताला के लिए महबूब हो, अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाता हो, हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों और गुनाहों से अपने आप को बचाते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका ने हमें इस जानिब मुतवज्जे किया कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और खाली इस नियत से कि रास्ते में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ दे सकती है, कोई पत्थर है, कोई टहनी है, खाली उसको हटा दो। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक इस इतनी कम छोटी सी नेकी के बदौलत भी अल्लाह तबारक बताला तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। एक और हदीस शरीफ में फरमाया कि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के पास कोई हाजत लेकर आए, कोई ऐसी बात लेकर आए कि जो वो दूसरा मुसलमान उस सिलसिले में उसकी मदद कर सकता है और दूसरा मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए कोशिश करे, ख्वाह वो हाजत पूरी हो या ना हो, खाली कोशिश करने पर अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों की मगफरत फरमा देगा। कितनी उसकी करम नवाजी है, वो आलिम गैब व शहादा है, वो जानता था, वो जानता है कि शैतान इस उम्मत के लोगों को और गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरगलाने की कोशिश करता रहेगा। और जैसा कि वो कहकर आया है कि मैं कभी दाएं से बहकाऊंगा, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से, तो ऐसी कैफियत में ये लोग अपने गुनाहों में इजाफा कर देंगे। इसलिए गुनाहों से बचने की भी कोशिश और नेकियों की तरफ मुतवज्जे रहने की भी कोशिश। यही वजह है कि खानकाहों में इस तरफ तवज्जो दी जाती है कि अपने नफ्स को काबू करने की कोशिश करते रहो और जिक्र के जरिए अपने दिल की स्याही को दूर करने की कोशिश करते रहो और फिर तुम देखोगे कि अल्लाह तबारक बताला तुम्हें इस बात का इदराक देगा कि तुम क्या गलत और क्या सही कर रहे हो। जब तक हमारे अंदर ये कैफियत मौजूद है कि हम गुनाह को गुनाह और नेकी को नेकी समझ रहे हैं, समझें कि ईमान की रमक बाकी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इस तरह के अमाल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिसमें वो इस चीज़ को गुनाह ही नहीं समझते और मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला से गद्दारी कर रहे हैं। इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रिज़क अता फरमाता है लेकिन उस रिज़क से बरकतें छीन लेता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि करोड़पति होने के बावजूद भी वो परेशान होता है, लाखों पति होने के बावजूद भी वो परेशान होता है, उसके दिल का चैन और सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत छीन लेता है, उसके पास से वो खत्म कर देता है। वो हजारों और लाखों और करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी उसका सुकून खत्म हो जाता है। ये कैफियत हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हरदम इज्जानी मुतवज्जे रहें और अपने गुनाहों की मगफिरत की कोशिश करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी 100 मरतबा रोजाना इस्तगफार पढ़ा करते थे। पूछा, हुजूर आपको क्या जरूरत, आप तो खुद शफीउल मुज़नबीन हैं, गुनाहों को गुनाहगारों को बख्शवाने वाले हैं। قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے تو فرمایا کیا میں شکر بھی ادا نہ کروں، کیا میں شکر بھی ادا نہ کروں؟ آج اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی ذرا استغفار پڑھا کرو، کہ نہیں حضرت میں تو ایسا کوئی گناہ کرتا نہیں ہوں. ارے بھائی کیسے کہہ دیا کہ گناہ نہیں کر سکتے؟ اس کائنات و ہست و بھوت کے اندر جب آ گئے تو دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم گناہگار سیاکار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی. آج ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہیں. پچھلی امتوں میں اگر کوئی رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے ماتھے پہ گناہ لکھا ہوتا تھا. بتاؤ منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ اگر کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تو ہماری یہاں کیا ہے کہ جتنی نجاست لگی اتنے حصے کو دھو دو، کپڑا پاک ہو جائے گا. پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اتنے کپڑے کو کاٹ دو تاکہ وہ حصہ ہٹ جائے اور اس کے بعد بقیہ حصہ پاک رہے، تو کتنے ٹکڑے ہو جاتے. یہ حضور کا کرم، سرکار کا صدقہ کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی کی ہوئی ہے. اور ہمارا کیا عالم ہے، ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ عیب، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ، ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب تو ہمارے ہاتھوں میں یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ ہم پر اپنے آپ پر کوئی قابو ہی نہیں. ذرا سا کسی کا کوئی عیب ملتا ہے، ہم اس کو بڑا چڑھا کر فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو بھی پتہ چل جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے. اور اللہ رب العزت کا کرم دیکھو کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، وہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے. وہ ستار العیوب ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت ثقہ ہیں، ہم تو بہت نیک و کار ہیں، ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں. اس کی کرم نوازی دیکھو. فرمایا میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند ابو یالا کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں. آج ہم لوگ نمازوں کے بعد ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں، اپنی محفلوں کے اختتام پر ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ حدیث شریف دیکھو، ہماری یہ ملاقات اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی ملاقات ہے. اس میں ہماری اپنی کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی، کوئی اپنا مطلب نہیں ہے، بس اس لیے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اگر کوئی شخص ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے مل رہا ہے اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، مسافہ کرتا ہے، میرے آقا حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح ملے اور سرکار پر درود بھیجے، ان دونوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا. غور کیجئے یہ اس کا کتنا کرم ہے، میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے کہ ان کے صدقے میں ہمیں یہ نیکیاں مل رہی ہیں. تو اب آپ غور کیجئے کہ گناہوں کے انبار لے کر ہم گھوم رہے ہوں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدولت ہمارے انبار والے گناہوں کو جھاگ کی طرح، پانی کے جھاگ کی طرح ختم کر دیتا. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس سے مغفرت طلب تو کی جائے، اس سے معافی تو مانگی جائے، اس سے عرض تو کی جائے دیکھو وہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنے لوگوں کو وہ بخش دیتا ہے، کیسے کیسے اس نے ہمیں بہانے اور نیکیاں عطا کر دیں کہ اگر یہ کرو چلو میں اس طرح بخش دوں. کوئی بیمار کی عیادت کرنے گیا، اللہ فرماتا ہے اس نے یہ نہیں کی کہ چلو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں، راستے سے پتھر ہٹا دیا چلو اس کے گناہ کی مغفرت کر دوں. مسلمان بھائی کی عزت رکھی. حدیث شریف کے مطابق کوئی شخص अगर एक दूसरे मुसलमान की इज्जत भी रखे, सरकार फरमाते हैं वो भी गुनाहों का कफारा। हम तो एक दूसरे की बेइज्जती करने पे तुले होते हैं, एक दूसरे की इज्जतों को खराब करने की कोशिश करते हैं। फिर मुसलमान के लिए, अगर मुसलमान मुसलमान बन जाए, हम लोग अपने दीन को अपने सीने से लगा लें और उस पर अमल करते रहें, तो हमारे लिए नफा ही नफा है। मोमिन के कांटा भी चुभ जाए तो गुनाहों का कफारा है। अगर कोई नेकोकार है उसके दराजात की बुलंदी है। बुखार चढ़ जाए और उसने उसके ऊपर सबर किया, हदीस शरीफ के मुताबिक उसमें भी गुनाहों का कफारा। तकलीफ में भी फायदा, राहत में भी फायदा, तो ये फायदा सिर्फ दीन इस्लाम की बदौलत है। ये फायदा सिर्फ रसूलुल्लाह के सदके की वजह से, हुजूर की उम्मती, हुजूर के उम्मती होने की वजह से है। फिर उसने हमारी कितनी ऐब पोशी की। देखो, अगर पारसियों के यहां कोई मर जाए तो वो क्या करते हैं, उसकी लाश को ऊपर एक मीनार पे कहीं ऊपर रख देते हैं, एक जाली बनाकर उसके ऊपर रख देते हैं। अब परिंदे हशरात आ रहे हैं वहां से, गिद्ध और कौवे चीले आकर उसकी लाश को नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, इसी तरह वो खत्म हो जाता, जो उसका अंजाम है। हिंदू अपने मुर्दे को आग में जला देते हैं, आपने देखा होगा। तो यहां पाकिस्तान का माहौल है, अगर हिंदुस्तान का माहौल हो तो आपको पता चले, और आपको पता है, और जो जितना बड़ा होगा उसको उतनी कीमती लकड़ी के साथ जलाएंगे। इंदिरा गांधी मरी तो सुना उसको शीशम की या पता नहीं कौन सी कीमती लकड़ी की में रख के उसको जला, जल तो गई ना, जलाना तो हुआ। कितना कुछ लोग चैंबर में फूकने की वो करते हैं कि ईसाई, बहुत से ईसाई कहते हैं कि चलो एक बॉक्स में रखो अंदर, वो चैंबर में डाल दो, अंदर ही अंदर आदमी खत्म हो जाता। इस्लाम वो मजहब है जो अपनी मैयत को भी इज्जत अता फरमाता। मेरे आका हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई शख्स जाकनी के आलम में है तो उसके पास पहुंचकर सूरह यासीन की तिलावत करो, कलमे तैयबा का विर्द करो। हुक्म यह है कि उसको कहो नहीं कि कलमा पढ़ो, अगर उसने कहा मैं नहीं पढ़ता तो वो काफिर हो जाएगा। इसलिए कहो नहीं, बल्कि उसके पास जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दो। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई या बहन को किस तरह रुख्सत कर रहा है, वो दुनिया से चला गया, अब उसको एजाज के साथ उसके जिस्म को गुसल दिया जा रहा है, तमाम निजासतें जाहिरी निजासत से उसको साफ सुथरा करके पाक साफ कपड़े के अंदर कफन की सूरत में लपेटा जा रहा है, फिर उसको गहवारे में लिटाया जा रहा है, और सारे मुसलमान उसको अपने कंधे पे रख के कंधा देते हुए कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, और उससे पहले सारे मुसलमान उसकी नमाज जनाजा अदा करके अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ कर रहे हैं कि इलाहुल आलमीन हमारी इस मैयत को बख्श दे। कि इस दीन इस्लाम का एहसान नहीं कि जिंदगी में भी इस्लाम ही काम आ रहा है, और जब दुनिया से रुख्सत हो गए फिर भी इस्लाम और मुसलमान काम आ रहे हैं, सरकार की तालीमात काम आ रही है। मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है और नमाज जनाजा में शिरकत करता है, सरकार ने फरमाया उसको एक किरात का सवाब हासिल होता है। हुजूर एक किरात क्या किरात, हुजूर ने एक वजन बताया, एक पैमाना बताया, फरमाया एक किरात के बराबर। या रसूलल्लाह किरात क्या, फरमाया किरात एक ओहद पहाड़ के बराबर। और अगर उसने नमाज जनाजा के बाद मैयत को दफनाने में भी शिरकत कर ली तो उसको दो किरात का सवाब मिलेगा। नेकियों पे नेकियां मिल रही हैं, मैयत की वजह से जिंदे को फायदा पहुंच रहा है और जिंदे की वजह से मैयत को फायदा पहुंच रहा है, ये वो रिश्ता इस्लाम है जो एक दूसरे की हम मदद करते हैं, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि उसने हमें दीन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया। अब उस मैयत को सब मुसलमान एहतियात के साथ कब्र के अंदर उतार देते हैं, पटाव रख दिया जाता है, मट्टी डाल दी जाती है और सबको हुक्म होता है तुम सब मट्टी डालो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो इज्तिमाइयत है इसका बड़ा सवाब है, नमाज में जमात का सवाब है, और जो भी मामलात में इज्तिमा होता है उसका फायदा होता है, क्योंकि इतने लोगों में कोई ना कोई एक जरूर नेकोकार या जन्नती जरूर होता है। अल्लाह तबारक बताला कभी किसी की वजह से किसी को बख्श देता है, कभी किसी की वजह से किसी को बख्श देता है। कभी मैयत तमाम जनाजे वालों को बख्शवा देती है, और कभी एक जनाजे में शरीक मैयत को बख्शवा देता है। ये करम नवाजी है अल्लाह तबारक व तआला की, अपने गुनाहगार बंदों की वो किस तरह मगफरत फरमाता है। मेरे आका हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। ये जनाजे में कोई साथ जा रहा है उसके लिए अजर व सवाब, दफना रहा है उसको अजर व सवाब, और कितने मामलात के अंदर हमें कदम कदम पर नेकियां मिल रही हैं। ना जिस्मानी मुशक्कत है, ना पैसे का कोई खर्च, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों में इजाफा करता जा रहा है। और गुनाह, गुनाह के लिए हम खर्चा करते हैं, माज़अल्लाह उसके लिए हम मुशक्कत करते हैं, तो कितने घाटे का सौदा है कि जो बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी उसके मिल जाए वो तो हासिल नहीं कर रहे, और जो मुश्किल से मिल रहा हो, जो जनाब कोशिश से मिल रहा हो, खर्चे से मिल रहा हो, हम वो हासिल करने के चक्कर में रहते हैं। माँ बाप दुनिया से रुख्सत हो गए, उनको कब्रों में दफन कर दिया गया। हदीस शरीफ में आया कि कोई शख्स अपनी माँ या बाप या दोनों जुमे के दिन उनकी कब्रों पर जाकर उनकी कब्रों की ज्यारत करे और उनको इसाले सवाब करे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी इस अमल पर उसके गुनाहों को बख्श देता है। अब आप देखिए, इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने हमें आलम नासूत में भी फायदा दिया और आलम बरजख में भी फायदा दिया, और इंशाअल्लाह आलम आखिरत में भी फायदा देगा। ये तो हम जैसे लोगों की बात है कि हम एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, हम गुनाहगार गुनाहगार को फायदा पहुंचा सकते हैं, और अगर कहीं एक तरफ नेकोकार हो तो वो न जाने कितना फायदा पहुंचा देता है, कितना फायदा पहुंचा देगा। कुर्बान जाओ उन लोगों पर जिनकी नमाज जनाजा में, जिनकी तदफीन के अंदर कोई नेकोकार होता है, और अल्लाह ताला उसकी नेकी और उसके मकबूल होने की बरकत से साहिब कब्र और साहिब मैयत जो है उसकी मगफिरत फरमा देता है। कोई मुसलमान मर गया, इंतकाल कर गया, यतीम बच्चों को छोड़ गया, अब दूसरा मुसलमान अपने मुसलमान भाई के बच्चों की किफालत करे, अल्लाह ताला उसकी बरकत से गुनाहों को बख्श रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं। मेरे आका हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे सगीर की हदीस, हुजूर ने फरमाया मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुर सिरात पर नूर है, और जो शख्स रोजे जुमा मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़े उसके 80 बरस के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। 80 बरस तो उम्र भी नहीं, पता चला कि जितने भी उम्र है सरकार पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। तो अब हम अपनी जिंदगियों के बहुत सारे शब रोज गुजार चुके हैं, बहुत सारा वक्त गुजर गया, आइए आज से हम अहद करते हैं कि हम अपने आप को नेकियों की तरफ मुतवज्जे करें और कोशिश करें कि अपने आप को गुनाहों से भी बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की गुनाहों की मगफिरत फरमाए, हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों की मगफिरत फरमाए और हमें नेकियों की तरफ मुतवज्जे रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।